वैदिक देवतावाद से इस साधना का अंतर। वैदिक देवतावाद से इस साधना का अंतर। वेदों में प्रतिपादित धर्म का स्वरूप क्या है? उसमें कितने ही लोगों ने अद्वैतवाद, कितनों ही ने एकेश्वरवाद और कितनों ने ही बहुदेववाद का संधान पाया। असल में समूचे वैदिक साहित्य में कोई एक ही धार्मिक या तत्व ज्ञानात्मक एकरूपता नहीं है। यहाँ तक कि ऋग्वेद के 10-17 सूक्तों में भी किसी एक सामान्य मत का संधान पाना दुष्कर है। इन सूक्तों में अनेक ऋषियों के अनेक प्रकार के विचार ग्रथित हैं। ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर स्पष्ट रूप से एकेश्वरवाद की दृढ़ कंठ से घोषणा की गई है। बताया गया है कि एक ही महादेवता को ऋषियों ने नाना नाम से अग्नि, यम, मातरिश्व आदि कहकर नाना भाव से बताया। फिर कहा गया है कि आरंभ में समस्त भूतों का अधिपति एकमात्र हिरणगर्भ ही था, उसी ने द्युलोक और भूलोक को धारण किया है, और कौन दूसरा देवता है जिसे हम हविष अर्पित करें। इन तथा ऐसे ही मंत्रों में बड़ी दृढ़ता के साथ एक महादेवता की उपासना ही पर जोर दिया गया है। पर इसमें संदेह नहीं कि ऐसे मंत्र कम हैं। अधिकांश मंत्रों में अनेक देवताओं का उल्लेख मिलता है। साधारणतः देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। इनमें 11 आकाश के, 11 पृथ्वी के और 11 जल के देवता कहे गए हैं। इन देवताओं की पत्नियों की भी चर्चा मिल जाती है। वेतान सूत्र में अग्नि की पृथ्वी, वाक की वक, इंद्र की सेवा, बृहस्पति की धेना, पूसन की पथ्या, वसु की गायत्री, रुद्र की त्रिष्टुप, आदित्य की जगती, मित्र की अनुष्टुप, वरुण की विराज, विष्णु की पंक्ति और सोम की दीक्षा, ये देव पत्नियां बताई गई हैं। इनमें से कोई संदेह नहीं कि इनमें रूप की कल्पना स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रही है। पर जो लोग मानते हैं कि तांत्रिक शक्ति कल्पना भारतीय धर्म साधना में नई चीज है, उनके विचार के लिए इनमें प्रचुर सामग्री भी है। ऐसा जान पड़ता है कि 33 देवताओं में सभी वैदिक देवता सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अग्नि, सोम, मरुत, अश्विनी, आप, उषा, सूर्य आदि देवताओं का पृथक उल्लेख भी है। और कभी कभी तो वैदिक कवि उल्लास की अवस्था में अत्युक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वह 33 देवताओं में संतुष्ट न होकर कहता है कि देवताओं की संख्या 3339 है। यह सब देखते हुए यही कहना पड़ता है कि वेदों में बहुदेववाद ही प्रधान धर्म है। बहुदेववाद का मतलब क्या है? यह शब्द अंग्रेजी के पॉलीथिज्म शब्द के तौल पर गढ़ लिया गया है। अंग्रेजी में पॉलीथिज्म शब्द का अर्थ निश्चित है हो जाता है। इस शब्द से एक ऐसे देवता विधान का बोध होता है जिसमें बहुत से छोटे बड़े देवता जिनका पद गौरव और मर्यादा थोड़ा छोटा बड़ा भाव निश्चित हो चुका रहता है, एक महादेवता के अधीन होते हैं। ग्रीस का बहुदेवता विधान ऐसा ही है। इसका बड़ा देवता जीएस या जुपिटर है। मैक्स मूलर ने बताया है कि इस ग्रीक विधान से वैदिक विधान का कोई साम्य नहीं है। केवल ग्रीक या रोमन देवता विधान ही नहीं, वैदिक बहुदेववाद यूराल, अल्ताई या अमरीकी आदिम अधिवासियों या अफ्रीकी आदिम अधिवासियों की देवता विधान से भिन्न है। इस विधान का जो देवता जब उपासित होता है वही उस समय सबसे बड़ा देवता है। इंद्र की उपासना के समय इंद्र, अग्नि की उपासना के समय अग्नि और वरुण की उपासना के समय वरुण ही महादेवता है। यह एक प्रकार से स्वतंत्र देवताओं का संघ है, जबकि ग्रीक और रोमन पॉलीथिज्म एक बड़े सम्राट के अंतर्गत नाना मर्यादाओं के अधिकारी देवताओं का एक दरबार है। दोनों में बड़ा अंतर है। मैक्स मूलर ने इसलिए पॉलीथिज्म शब्द को भ्रामक बताया था और वैदिक बहुदेववाद के लिए एक नए शब्द के प्रयोग का सुझाव रखा था। यह शब्द है हेनोथिज्म, एक या एक एक देववाद। उदाहरणार्थ मैक्स मूलर ने बताया है कि किस प्रकार ऋग्वेद में द्यावा पृथ्वी की समस्त देवताओं को धारण करने वाला, सबके माता पिता कहकर स्तुति की गई है। द्यावा पृथ्वी का मतलब है द्युलोक और भूलोक, आसमान और जमीन। बताया गया है कि आकाश और पृथ्वी के बीच में जो कुछ है वह द्यावा पृथ्वी का है। ये समस्त देवताओं को धारण करने वाले हैं, परंतु फिर भी यह भी बताया गया है कि इस द्यावा पृथ्वी को इंद्र ने बनाया है, इंद्र ने ही उन्हें धारण किया है, इंद्र के बल से ही ये बलियमान है। केवल इंद्र ही नहीं, अन्य देवताओं के बारे में भी इस प्रकार की विशेषण का प्रयोग है। द्यावा पृथ्वी के धारण करने वाले वरुण भी हैं, सूर्य भी हैं, धाता भी हैं और विश्वकर्मा भी हैं। सो इस देवता विधान को बहुदेववाद नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वैदिक ऋषि प्रकृति के तेजोमय रूप में एक प्रकार की देवत्व बुद्धि रखते हैं। यह जो कुछ चर्म सचियों से दिखा गया वह चरम और परम नहीं है, इसके पीछे कुछ और है जो इसे तेज दे रहा है। नदी में जो प्रवाह वेग है वह वहीं तक सीमित नहीं है, इस प्रवाह वेग को वेगवती करने वाली कोई शक्ति है। सूर्य को सूर्यता देने वाला कोई अदृश्य तेजो धर्मा देव है। देव वस्तुतः उस तेज और चमक देने वाले विशेषण का ही बोधक है। पश्चिमी साहित्य में बहुवचन के प्रयोग किए जाने वाले गॉड का निश्चित अर्थ है, वह रूढ़ हो गया है, परंतु वैदिक ऋषि देव शब्द का प्रयोग इस प्रकार के किसी रूढ़ अर्थ में नहीं करते। जो दृप्त रूप से उल्लासित होता है अपने उल्लास को किसी प्रकार की पूर्व निर्धारित कल्पना से बाधित नहीं होने देता। वैदिक देवता विधान को बहुदेववाद नहीं कहा जा सकता, यह तो पश्चिमी पंडितों ने ही कहा था, पर उससे एक व्यापक शक्तिदात्री सत्ता का बोध होता है। यह बात न जाने क्यों स्वीकार नहीं की जाती। आखिर प्रत्येक देवता का महादेवता मान लिया जाना तभी तो संभव है जब देवता में वेद बुद्धि का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अभाव होता है। कहीं न कहीं वैदिक मंत्र दृष्टा के चित्त में यह बात जरूर थी कि यह जो कुछ तेजो में दिख रहा है वह किसी एक के महासत्ता की शक्ति से शक्तिमान होने के कारण है। कोई देवता बड़ा है, कोई देवता छोटा नहीं है, किसी की मर्यादा नीचे नहीं है। साक्षात्कार के समय जिसने भी साधक के चित्र में उल्लास का संचार किया वही बड़ा देवता है, क्योंकि अंततो गत्वा सभी तो एक ही परम देवता के रूप है। विद्वान लोग उस एक का ही अनेकों नाम देकर बताते हैं, एक सदुप्रा बहुधा वदंती। वस्तुतः यदि इस प्रकार का कोई भाव ऋषियों के चित्र में न होता तो इस प्रकार के देवता विधान की कल्पना भी संभव नहीं थी। हेनिथिज्म नाम दे देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता, उस मनोवृत्ति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे ऐसे देवता विधान की कल्पना उद्भूत हो सकी। और ऊपर हमने जो कुछ कहा है उससे भिन्न और क्या समाधान खोजा जा सकता है। प्रकृति यह है कि वैदिक ऋषि यद्यपि एक प्रकार से अद्वैत तत्व या एक तत्व को स्वीकार करते हैं, परंतु उनका जोर बाह्य जगत में व्याप्त अनंत शक्ति स्रोतों की ओर है जिन्हें वे देवता कहते हैं। इसी समय जबकि ये मंत्र लिखे जा रहे थे योग मार्ग भी अवश्य जीवित था, जो इस मानव शरीर को ही समस्त शक्तियों का मूल उच्च मानता था। परवर्ती काल में उपनिषदों में यह विचार प्रधान होने लगा था कि सभी देवता वस्तुतः मान शरीर के विविध इंद्रियों की अधिष्ठाता हैं। इस प्रकार उपनिषदों के युग में योग मार्ग धीरे धीरे प्रधान भारतीय विचार का रूप धारण करता जा रहा था। ऐसा जान पड़ता है कि वैदिक देववाद और योग मार्ग दो प्रकार की असमान परिस्थितियों में विकसित हुए थे और अंत में एक दूसरे को प्रभावित करने में समर्थ हुए थे। योग मार्ग प्रधान रूप से गणतांत्रिक व्यवस्था, वैराग्यवादी तत्व ज्ञान और व्यक्ति तत्व प्रधान दृष्टि की उपज है, जबकि बहुदेववाद ऐसे समाज में संभव है जिसे विजय पर विजय प्राप्त करने के कारण जीवन उल्लास में दिख रहा हो, जिसमें तेजस्विता पूरी मात्रा में हो और साथ ही जिसमें शिशु जनोचित औत्सुक्य हो। क्रमशः इसमें सामंती मनोवृत्ति के चिन्ह स्पष्ट से स्पष्टतर होते जाते हैं और विरोधी का उच्छेद काफी महत्वपूर्ण स्वर हो जाता है। परंतु हमारे आलोच्य काल में इस बातों का बहुत दूर तक का संबंध है। केवल मूल स्वर को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही यहाँ इस मार्ग की कुछ विस्तृत अवधारणा की गई है। महाभारत काल में योग साधना सुसंस्कृत भारतीय विचारधारा का प्रधान अंग हो गया था। और इस बात का निश्चित प्रमाण है कि बुद्ध युग के साधकों का यह अति मान्य मत था।